पृथ्वी के नए सेक्रेटरी प्रणय ने थोड़े समय पहले ही उसके लिए काम करना शुरू किया था और इशिका को उसका बर्ताव थोड़ा संदेहजनक लग रहा था। हालांकि पृथ्वी के समझाने और इस बात की वजह देने पर कि उसके कहने पर ही प्रणय इशिका और अभिमन्यु की गाड़ी के पीछे था, तब इशिका पृथ्वी की बात मानने पर मजबूर हो गई थी। फिर भी मन ही मन इशिका को यही लग रहा था कि उसने प्रणय को कहीं देखा है। प्रणय वही आदमी था जो इशिका के एक्सीडेंट के पीछे जिम्मेदार था। प्रणय ने इशिका की गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की थी और अब वो अपने बॉस से बात कर रहा था। प्रणय अपने बॉस से बात ही कर रहा था कि अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने जल्दी से पलटकर देखा तो उसके सामने इशिका खड़ी हुई थी। इशिका को देखते ही वो घबराकर जल्दी से खड़ा हो गया। वहीं इशिका ने उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखा और कहा, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है मैम, वो अचानक से आपने आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं डर गया था, प्रणय ने हड़बड़ाकर अपनी सफाई में कहा। लेकिन चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है, इशिका ने सिर हिलाकर कहा। उसने प्रणय को ऊपर से नीचे तक देखा। प्रणय ने अपनी नज़रें झुका ली थी। इशिका ने गहरी सांस ली और एक पेनड्राइव वहां रखते हुए कहा, इसका डेटा एनालाइज करो और मुझे कल तक दे देना। और हाँ, ऑफिस आवर्स में तुम पर्सनल कॉल्स नहीं अटेंड कर सकते हो, सॉरी मैम, प्रणय ने तुरंत माफ़ी मांगी। इशिका वहां से चली गई थी, लेकिन उसकी इस छोटी सी हरकत से प्रणय बुरी तरह घबरा गया था। वो जल्दी से अपने मोबाइल के साथ रेस्टरूम में गया और कॉल को कंटिन्यू करते हुए कहा, वो बहुत कॉन्फिडेंट रहती है और अगर किसी की मेमोरी चली जाए तो वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? मैंने आपको सारे प्रूफ दे तो दिए। अभिमन्यु राजवंश कोई राह चलता आदमी नहीं है जो मैं उसके खिलाफ एक सेकंड में कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी बात, इस काम में वो अकेला इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि मुंबई में हमारी ब्रांच के इंस्पेक्शन के लिए आई डॉक्टर मर्चेंट को हमारे बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया था, इसीलिए उसका एक्सीडेंट करवाया गया और अभिमन्यु को उसका सच पता चल गया था। राजवंश फैमिली का एक और इंसान हमारे साथ जुड़ा हुआ था और उसकी अभिमन्यु राजवंश के साथ राइवलरी थी। उसके पास हमसे बदला लेने की कई वजह हो सकती हैं, पर वो ये अकेला नहीं कर सकता है। इसके लिए किसी हैकर की जरूरत है और मुझे उस इंसान का नाम चाहिए। सिर्फ वही है जो सब सही कर सकता है। जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता तब तक मैं कोई भी स्टेप नहीं उठा सकता हूँ। आगे से अधूरी जानकारी बताने के लिए मुझे कॉल मत करना। सामने से एक सख्त गुस्से भरी आवाज आई और कॉल कट हो गया था। प्रणय को अपनी सफाई देने का भी मौका नहीं मिला और उसने अपना सर पकड़ लिया था। क्या मैंने उन्हें आधी अधूरी बातें बताईं? उनके चक्कर में मैं अपनी जान दांव पर लगाकर यहाँ काम कर रहा हूँ। अगर वो अभिमन्यु राजवंश को अपने कब्जे में ले लें तो अभिमन्यु खुद ही उसके बारे में बता देगा, प्रणय ने झुंझलाकर कहा। मजबूरन प्रणय को वापस बाहर आना पड़ा। वहीं इशिका अपने केबिन में बैठकर प्रणय पर नज़र रख रही थी। जिस तरह वो इशिका के आने पर हड़बड़ा गया था और उसके जाने के बाद वापस अपने मोबाइल के साथ रेस्टरूम में गया था, इतनी वजह काफ़ी थी उस पर शक करने के लिए। इशिका के चेहरे के भाव इस वक्त सख्त हो गए थे। उसने तुरंत दिशांक को कॉल लगाया और कहा, एक आदमी की डिटेल्स भेज रही हूँ, उसके बारे में पता लगाओ। यकीन नहीं होता कि वो अभिमन्यु के इतने क्लोज पहुँच गया और वो भी पृथ्वी के जरिए। आदमी ही तो है, कौन सा कोई लड़की है जो आप उस पर शक कर रही हैं? दिशांक ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, जो इस वक्त लैब में काम कर रहा था। इशिका ने आंखें घुमाई और जवाब में कहा, आई एम सीरियस दिशांक, कामयाबी का रास्ता तय करने के बाद किसी के भी दुश्मनों का बढ़ना तय होता है। ऊपर से बहुत दिनों से मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा, बस मुझे कुछ दिनों का टाइम चाहिए होगा क्योंकि मैं पहले ही कामों में उलझा हुआ हूँ, दिशांक ने गंभीर आवाज में कहा। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ आशिका के लिए रिहान से कांटेक्ट करने के लिए रचित को आशिका का मोबाइल चाहिए था, जो कि इस वक्त आशुतोष के पास था। अभिमान और आशुतोष सिंघानिया के बीच हमेशा से अनबन रही थी, इस वजह से उनके बीच कभी पर्सनल या प्रोफेशनल रिश्ते नहीं बन पाए थे। आज आशिका के लिए अभिमान पहली बार आशुतोष से मिलने के लिए सिंघानिया ग्रुप जा रहा था। बिना किसी अपॉइंटमेंट के अभिमान का आशुतोष से मिलना आसान नहीं था, लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला उसकी मुलाकात आशी से हुई, जो अभी ऑफिस आई थी। आशी को यही लगा था कि अभिमान और आशुतोष साथ में कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे और यही मौका था जब वो अभिमान के आसपास रह सकती थी। अभिमान को वहां देखकर आशी को सच में यकीन हो गया था कि उस रात वो दोनों झूठ नहीं बोल रहे थे। आशी मुस्कुराते हुए अभिमान के पास आई और बोली, डैड से मिलने के लिए आए हो? हाँ बिल्कुल, अभिमान ने जवाब दिया, उसका लहजा बिल्कुल शांत था। साथ में ऊपर चले? आशी ने हल्का हिचकिचाकर पूछा। आशी को यही लग रहा था कि अभिमान मना कर देगा, लेकिन अभिमान को भी किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसे सीधे आशुतोष के केबिन तक पहुंचा दे। उसने बिना किसी सवाल के उसकी बात पर हामे सिर हिला दिया था, जो आशी को काफी हैरान कर रहा था। आशी ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। चलते हुए आशी ने नरम आवाज में कहा, मैं तुमसे अपोलोजाइज करना चाहती हूँ, मैं सच में कई बार काफी सेल्फिश हो जाती हूँ, मैंने बहुत गलतियां की हैं, पर ट्रस्ट मी, मैं अब सब ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। दैट्स गुड, अभिमान ने जवाब में इतना ही कहा। उसने चलते हुए एक नज़र आशी की तरफ देखा और मन ही मन बोला, पता नहीं इसे कब तक झेलना पड़ेगा और ये मुझसे इतनी शुगर कोटिंग बातें क्यों कर रही हैं। अगर मिस्टर सिंघानिया के पास पहुंचने के लिए मुझे इसकी हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती तो मैं कभी इसकी बकवास नहीं सुनने वाला था। क्या हम आज साथ डिनर करें? लिफ्ट में घुसते ही आशी ने पूछा। वो दोनों लिफ्ट में अकेले थे। फिलहाल मेरे पास किसी भी चीज़ का टाइम नहीं है, जब फ्री हो जाऊंगा तब बताऊंगा, अभिमान बोला। आशी ने हाँ में सिर हिला दिया था। उसका मन नहीं कर रहा था कि वो आशिका के बारे में पूछे, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को काबू में रखा। अगर वो खुद से आशिका के बारे में पूछती तो शायद अभिमान को शक हो सकता था। ऊपर से आशिका के गायब होने की बात किसी को पता भी नहीं थी। इससे पहले कि आशी आगे कुछ पूछ पाती, लिफ्ट रुकी और अभिमान जल्दी से बाहर निकल गया था। आशी अभिमान को लेकर आशुतोष के केबिन में पहुंची। आशुतोष किसी प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अभिमान को वहां देखा, उन्होंने तुरंत अपने मैनेजर को वहां से भेज दिया था और अभिमान की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराकर कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी दूसरी मुलाकात कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई, जबकि पहले तो हम एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे? पहले की बात अलग थी मिस्टर सिंघानिया, और अब अलग, अभिमान ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर आशी के गाल लाल होने लगे थे और एक पल के लिए उसे यही लगा कि सच में उसका और अभिमान का रिश्ता जुड़ने जा रहा था। आशुतोष ने आशी की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। आशी, क्या तुम हमारे लिए कॉफी भिजवा दोगी? उसके ख्यालों से बाहर निकालने के लिए आशुतोष ने तेज और सख्त आवाज में कहा। बिल्कुल डैड, आशी ने जल्दी से जवाब दिया और फिर अभिमान की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, बी कंफर्टेबल। आशी वहां से चली गई थी। उसके जाते ही अभिमान तुरंत आशुतोष के सामने जाकर बैठा और रूखे अंदाज में बोला, अब इसे क्या हो गया?
गलतफहमी और कुछ नहीं। खैर, उसे छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, आशुतोष ने बातचीत का रुख बदलते हुए कहा। मुझे कल रात आशिका का मैसेज मिला था। वो ठीक है, जैसे ही अभिमान ने बताया, आशुतोष खुशी से खिल उठे थे। क्या उसने तुम्हें मैसेज किया? क्या तुमने उससे कोई और बात की? क्या उसने मेरे बारे में पूछा? मिस्टर राजवंश ने बताया था कि आशिका को डीएनए रिपोर्ट के बारे में पता है। क्या वो रिपोर्ट का सच जानना चाहती थी? जरूर उसने इस बारे में कुछ तो डिस्कशन किया ही होगा, आशुतोष ने एक बार फिर अभिमान के सामने सवालों की झड़ी लगा दी थी। आपको ये क्यों लगता है कि उसकी दुनिया आपके ही इर्द गिर्द घूमती है? अभिमान ने आंखें घुमाकर जवाब दिया, जिस पर आशुतोष उसकी तरफ घूर कर देखने लगे थे। अभिमान ने गहरी सांस ली और उन्हें आगे बताते हुए कहा, उसने बस ये इन्फॉर्म करने के लिए मैसेज किया था कि वो ठीक है। इसका मतलब वो आकाश राजवंश के आसपास भी नहीं है, लेकिन साथ ही आशिका ने ये भी कहा था कि अब मुझे उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ भी करके उस तक पहुंचना है। इसके लिए मुझे उसके मोबाइल की ज़रूरत है। बहाना बना रहे हो मुझसे? मुझे उसका मैसेज दिखाओ। और मैंने तुम्हें बता दिया कि उसमें किसी तरह का कॉन्टैक्ट नंबर सेव नहीं है, फिर तुम कैसे उसके फ़ोन की हेल्प से उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो? आशुतोष ने चिढ़कर कहा। देखिए, मैं उसका मैसेज आपको नहीं दिखा सकता हूँ और वो अलग लैंग्वेज में है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, अभिमान ने शांत लहजे में कहा। वो पहले ही जानता था कि आशुतोष को समझाना सच में मुश्किल साबित होने वाला है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुम्हें मेरे यहाँ आने की इजाज़त मिल गई है क्योंकि मेरी बेटी ने तुमसे शादी की है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे बहकाकर उसकी चीज़ मुझसे छीन लोगे। अगली बार यहाँ पर दिखाई भी मत देना, मैं सिक्योरिटी से कह दूंगा कि तुम्हें पहले ही बाहर निकाल दे। आशुतोष अभिमान पर गुस्सा हो गए थे, जबकि अभिमान हैरानी से उनकी तरफ देख रहा था। आप इतने ज़िद्दी कैसे हो सकते हैं? उस तक पहुँचने का मैं रास्ता निकाल लूँगा, लेकिन याद रखिएगा, तब मैं उसे यही बताऊँगा कि रिपोर्ट आने के बाद आपने और मिसेस सिंघानिया ने कैसे रिएक्ट किया था। आपने उसे अपनी बेटी तक मानने से इनकार कर दिया था, और वो क्या कहा था आपने? आशिका तो आपकी बेटी हो ही नहीं सकती है, उसे तृप्ति ने पाला है, पता नहीं उसके डैड कौन है और वो किसका, अभिमान आशुतोष को उकसाए जा रहा था। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आशुतोष बीच में उसे काटते हुए चिल्लाकर बोले, तुम उसे ऐसा कुछ नहीं कहोगे, तुम क्या चाहते हो कि हमारा रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाए? ठीक है, ऐसी बात है तो उसका मोबाइल मुझे लौटा दीजिए, फिर मैं भूल जाऊंगा कि उस दिन आपने उसके बारे में क्या कुछ नहीं कहा था, अभिमान ने कंधे उचकाकर कहा और अपना हाथ आशुतोष की तरफ कर दिया था। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? आशुतोष ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ, आसान भाषा में तो इसे यही कहा जाता है, अभिमान बिना किसी हिचकिचाहट के ये एक्सेप्ट कर रहा था कि वो सच में आशुतोष को ब्लैकमेल कर रहा था। आशुतोष उसकी तरफ खा जाने वाली निगाहों से देख रहे थे। उन्होंने अपने पॉकेट से आशिका का मोबाइल निकाला। वो अभिमान की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने दोबारा अपना हाथ खींच लिया था। लेकिन इसमें उसकी फोटोज हैं, आशुतोष ने मुंह बनाकर कहा। डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, अभिमान ने जवाब दिया। मैंने कोशिश की थी, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों इस मोबाइल की सेटिंग मुझे नॉर्मल मोबाइल से अलग लग रही है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि ये उसने कहाँ से लिया, क्योंकि ये डिफरेंट है, आशुतोष बोले। आशुतोष को भले ही कारण समझ ना आ रहा हो, पर अभिमान अच्छे से समझ रहा था। जब आशुतोष बोल रहे थे, तब अभिमान ने उनके हाथ से फ़ोन ले लिया और दूसरी तरफ पलटते हुए बोला, सॉरी मिस्टर सिंघानिया, कोशिश तो आपने बहुत की थी कि आपकी बेटी और उसके मोबाइल को मुझसे हमेशा दूर रखा जाए, पर किस्मत ने हमें हमेशा से साथ ही लिखा था। हाँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम पहले से उसके साथ शादीशुदा हो, वरना अपनी बेटी के आसपास भी तुम्हें नहीं भटकने देता। देखना, एक दिन मेरी आशिका मेरे पास जरूर आएगी और उस दिन मैं उसे मना ही लूंगा कि वो तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे अच्छे लड़के से शादी करे, आशुतोष ने सख्त आवाज में कहा। अच्छा सपना है मिस्टर सिंघानिया, लेकिन आप अभी अपनी बेटी को ठीक से जानते कहाँ हैं, अभिमान ने हल्का हंसकर कहा। आशुतोष और अभिमान एक दूसरे से नोकझोंक करने में लगे हुए थे तो वही आशी आशुतोष के केबिन के सामने कॉफी की ट्रे हाथ में लेकर खड़ी हुई थी। इस वक्त उसकी सांसें काफी तेज हो रही थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने अभिमान और आशुतोष की बातें सुन ली थी और जो साफ इस तरफ इशारा कर रही थी कि आशुतोष और अभिमान दोनों ही आशिका के उनकी बेटी होने के सच को जान चुके हैं। ओके, आशी के सामने सच आ गया है, देखते आगे क्या होता है। वैसे 400 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और ये कहानी काफी लंबी चली गई है। बहुत से रीडर आज भी उसके साथ में जुड़े हुए हैं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरह साथ बने रहिए और पढ़कर समीक्षा करके जाइएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।